नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर घटाकर 6% की, विकास को बढ़ावा देने के लिए उदार रुख अपनाया। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को भी घटाकर 6.5% किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा संकट बताया, कहा इसका एकमात्र उपाय सतत जीवन शैली है। बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों की आज काठमांडू में बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 104% जवाबी शुल्क और भारत से आयात पर 26% शुल्क आज से लागू। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी की है। अब रेपो दर 6% हो गई है। रिजर्व बैंक ने 5 वर्ष में लगातार दूसरी बार रेपो दर घटाई है। इससे पहले फरवरी में रेपो दर कम की गई थी। आज मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया है कि 6 सदस्यों की मौद्रिक समिति ने इस वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में सर्वसम्मति से रेपो दर कम करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि खुदरा महंगाई पर 2025-26 में 4% रहने की संभावना है। इस बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज कारोबार की शुरुआत नुकसान के साथ हुई। सेंसेक्स 350 अंक के अधिक गिरकर 73,874 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 107 अंक से गिरकर 22,433 पर रहा। जवाबी शुल्क लगाने का अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला लागू हो गया है। इसमें चीन के आयात पर 104% शुल्क भी शामिल है। नई शुल्क व्यवस्था राष्ट्रपति ट्रंप की उस घोषणा के बाद लागू हुई है जिनमें उन्होंने चीन में अमेरिकी सामान पर लगाए गए 34% जवाबी शुल्क को वापस लेने की चेतावनी दी थी। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार इससे चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का लग सकता है और उसकी वृद्धि दर को 2.4% तक घाटा हो सकता है। इस बीच भारत से आयात पर लगाया गया 26% शुल्क भी आज से लागू हो गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस संबंध में कहा है कि सरकार द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में इस संबंध में फैसला किया था। श्री गोयल ने कहा है कि भारत ने कई मोर्चों पर बात की है जो सही और सभी देशों में आगे बढ़ रही है। इस सप्ताह के शुरू में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शुल्क की स्थिति पर विचार विमर्श किया था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार दोनों पक्षों ने निष्पक्ष और संतुलित व्यापार संबंध के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने हाल ही में श्रीलंका से निर्यात पर लगाए गए जवाबी शुल्क से राहत के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखा है। श्रम मंत्री अनिल जयंत फर्नांडो ने संसद में इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा है कि यह पत्र व्हाइट हाउस पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन को आज का सबसे बड़ा खतरा बताते हुए इसका एकमात्र उपाय जैन समुदाय की सतत जीवन शैली को बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैन समुदाय सदियों से सादगी, स्थिरता और संयम के सिद्धांतों का पालन करता आ रहा है। श्री मोदी ने स्वदेशी उत्पादों की अधिक से अधिक खरीद करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने के महत्व को रेखांकित किया। नवकार महामंत्र के महत्व के बारे में बताते हुए श्री मोदी ने कहा है कि ये मंत्र विकसित भारत के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। श्री मोदी ने लोगों से 9 संकल्प करने का आह्वान किया। ये 9 संकल्प है: जल संरक्षण, एक पेड़ माँ के नाम, स्वच्छता, स्वदेशी उत्पादों को अपनाना, घरेलू पर्यटन, जैविक खेती, स्वस्थ जीवन शैली, योग और खेल तथा जरूरतमंदों की सहायता करना। श्री मोदी ने ज्ञान को संरक्षित रखने की सरकार के कर्तव्य के रूप में प्राकृत और पाली को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान करने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि यह भारत के मिशन लाइफ के लिए अनुकूल है। श्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण साहित्यों के गुम हो जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ज्ञान भारत अभियान की शुरुआत करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया की यात्रा पर है। उन्होंने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ वार्ता की। इस दौरान भारत और स्लोवाकिया के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति की यह यात्रा 29 वर्षों के बाद हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत विदेशी बैंकों के लिए विकास के बेहतर अवसर प्रदान कर रहा है और सरकार बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। लंदन में भारत के निवेशक गोलमेज चर्चा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने नीतिगत समर्थन सहित सतत आर्थिक विकास और निवेश के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कल अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगी। 13 अप्रैल तक चलने वाले अपने 4 दिवसीय राज्य दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री पोषण पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए भारत सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई सत्र के दौरे और समीक्षा बैठकों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। केंद्र मंत्री क्रादादी और लोअर सुबनसिरी जिलों का दौरा करेंगी, जहां वो पोषण पखवाड़ा से संबंधित गतिविधियों में भाग लेंगी। पोषण पखवाड़ा कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा वे लाभार्थियों के साथ बातचीत करने और साथ ही सरकारी योजनाओं के प्रभावों का आंकलन करने के लिए क्षेत्र के स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, अस्पतालों का दौरा करेंगी। साथ ही सरकारी समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों से मुलाकात भी करेंगी। इन यात्रा का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और समुदायों के लिए प्रमुख सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खारी पहल बिम्स्टेक की तीसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक आज काठमांडू में हुई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भूटान के कृषि मंत्री ल्योनपो युनटेन फुनसो को नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल कल शाम बैठक में भाग लेने के लिए काठमांडू पहुंचा। बिम्स्टेक के अन्य 5 सदस्य देशों में कृषि मंत्री बैठक में वर्चुअली माध्यम से जुड़े हुए थे। नेपाल के कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कृषि की स्थिति और चुनौतियों तथा सदस्य देशों के बीच सहयोग से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई। भारत की ओर से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि मिशन जैसी कृषि पहलों में भारत की भूमिका का उल्लेख किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने अधिसूचित किया है कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना के तहत कर बकाया घोषणा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि इस महीने की अंत तक है। राजपत्र अधिसूचना में CBDT ने कहा है कि घोषणाकर्ता इस महीने की 30 तारीख को या उससे पहले नामित प्राधिकारी को अपना कर बकाया दाखिल कर सकते हैं। पंजाब में कल रात गुरदासपुर सेक्टर में विस्फोट में सीमा सुरक्षा बल का एक कर्मी घायल हो गया। विस्फोट में BSF और किसानों को निशाना बनाया गया था। यह घटना उस समय हुई जब BSF की टीम पाकिस्तान से लगी सीमा सुरक्षा बाड़ के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान उन्हें भारतीय क्षेत्र में संदिग्ध वस्तु नजर आई। छानबीन के दौरान टीम ने संदिग्ध IED की पहचान की, जिसके तार खेतों में छुपाए गए थे। क्षेत्र में कई IED लगाई गई थी। क्षेत्र की घेराबंदी करके IED हटाने की कोशिश में विस्फोट हो गया, जिससे BSF जवान के पैर में चोट आई। जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, अब वो सुरक्षित है। बिहार में बेगूसराय और आसपास के जिलों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग घायल हुए। सरकारी सूत्रों के अनुसार बेगूसराय में बलिया, भगवानपुर, मटिहानी और साहेबपुर कमाल इलाकों में 5 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 4 लोग घायल भी हुए हैं। मधुबनी और झांझरपुर इलाके में 3 लोगों की मौत हुई। और IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। चंडीगढ़ में कल रात खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रनों से हराया। एक अन्य मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 रनों से हरा दिया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर घटाकर 6% की। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को भी घटाकर 6.5% किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा संकट बताया। बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों की आज काठमांडू में बैठक हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 104% जवाबी शुल्क। और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।